हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना थोड़ा सा सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं सारी अरेंजमेंट कर लूंगी, क्योंकि अगर तुमसे बोला तो तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर पार्टी कैंसिल ही करवा दोगे, इसलिए। और तुम सिर्फ प्लीज सबको इन्वाइट कर देना, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने बड़ा सा मुंह बनाकर कहा, क्यों सबको इन्वाइट करना है? वो सारे लोग हमारे एडमायरर नहीं है जो सिर्फ हमारा अच्छा चाहें। सोना, तुम नहीं जानती हमारे रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर जो भी हैं, मैं क्यों उन सबसे दूरी बनाकर रखता हूँ? सारे लोग अच्छे नहीं होते। ये बात बोलते हुए आदित्य की आंखों में ही उसके बुरे एक्सपीरियंस का डर साफ नजर आ रहा था, तो सुनैना ने उसका हाथ थामकर उसे समझाते हुए कहा, एग्जैक्टली आदित्य, जिस तरह से सारे लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह से सारे लोग बुरे भी नहीं होते। और तुम्हें ये बात समझनी होगी, ये दुनिया ही सारी तरह के लोगों का एक मिक्स होती है। यहाँ पर सारे तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, हर कदम पर, हर जगह पर, तो तुम्हें उन सबसे डील करना आना चाहिए। कब तक इस तरह से हमेशा घर में बंद रहोगे और लोगों से मिलने से कतराते रहोगे? आदित्य, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, मेरे लिए। सुनैना की ये बात समझते हुए आदित्य बहुत ही गौर से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन सुनैना ने जैसे ही आखिरी बात बोली तो आदित्य ने एकदम ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहां से उठकर खड़े होते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? देखो कितनी ईजिली उठा लिया मैंने तुम्हें, आना हमेशा ही ऐसे उठाकर रख सकता हूँ और कहीं भी चल सकता हूँ तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। अपनी गोद में उठाए हुए सुनैना के चेहरे की तरफ देखते हुए आदित्य ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा। उसके इस तरह से अचानक गोद में उठाने की वजह से सुनैना ने आदित्य की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे पता था आदित्य ऐसा ही कुछ बोलेगा उसकी बात पर, और फिर उसके ऐसे अचानक से गोद में उठाने पर सुनैना को हंसी आ गई, तो वो इस तरह से हंसती हुई बोली, हाँ हाँ आदित्य, हाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें पता है मैं फिजिकल नहीं, मेंटली स्ट्रांग होने की बात कर रही हूँ, और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर शरारत से मुस्कुराते हुए सुनैना ने अपने निचले होंठ बाइट किए और उसके हाथ हवादित्य की शर्ट के कॉलर से अंदर जाने लगे थे, तो आदित्य ने एकदम ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अच्छा ये बताओ, मुझसे ज़्यादा तुम कैसे एक्साइटेड रहती हो हमेशा ही मेरे करीब आने के लिए? खुद ही मना करती हो और फिर खुद ही कंट्रोल नहीं होता है ना? आदित्य ने भी उसी तरह शरारत से मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखते हुए पूछा, तो सुनैना ने अपने इनर चीक्स को टंग से पोक करते हुए कहा, हाँ तो आखिर इतना हॉट हस्बैंड मिला है, वो भी बिना किसी मेहनत के, तो पूरा फायदा तो उठाना ही चाहिए ना? और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, शायद इसीलिए। आखिरी बात सुनैना ने जानबूझकर आदित्य को चिढ़ाने के लिए बोली, क्योंकि आदित्य हमेशा ये बात बोलता है कि वो सुनैना से बेपनाह प्यार करता है, जबकि सुनैना कभी इस बात को साबित करने की कोशिश नहीं करती और उसका प्यार उसके एक्शन में ही दिख जाता है आदित्य को। लेकिन आदित्य उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं था जब सुनैना शुरुआत में उससे मिली थी, इसलिए जब वो उसे अपने दिल की बात बोलता है तो सुनैना को बहुत ही अच्छा लगता है, और वही बुलवाने के लिए ही सुनैना ने अभी उससे ये बात बोली थी। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने उसे आगे लाते हुए बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर लेट गया और दोनों हाथ उसके चेहरे के दोनों तरफ रखकर उसकी आंखों में देखा हुआ बोला, चलो हॉट हस्बैंड वाली बात तो ठीक है, लेकिन प्यार, वो जितना मैं तुमसे करता हूँ ना सुनैना, तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अभी एक साल हुआ लेकिन मुझे तुम्हारे साथ 4 साल होने वाले हैं या शायद उससे भी ज़्यादा, और मैं ना तुम्हारे अलावा कभी किसी और की तरफ देखा तक नहीं। पता नहीं क्यों, जब से तुम नज़र में आई कोई और इस नज़र को भाया ही नहीं। सुनैना तो बस आदित्य के मुंह से यही सुनना चाहती हैं हमेशा। उसे इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि आदित्य की आंखों में ही उसे अपने लिए वो बेबनाह प्यार दिखता है, लेकिन फिर भी वो बात सुनकर उसे जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। आई नो आदि, आई नो एवरीथिंग, और मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आए, चाहे जैसे भी वो अब मैटर नहीं करता, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकती, कभी भी अपने से दूर। आदित्य के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए सुनैना ने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर कहा, तो आदित्य ने कहा, जाना भी कौन चाहता है तुम्हारी पनाहों से दूर, मैं तो बस यहीं रह जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इतना बोलते हुए उसने सुनैना के होठों पर हल्के से चूमा और फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगा, तो सुनैना की आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से एक आह निकली और सुनैना के हाथ आदित्य की पीठ पर उसकी शर्ट को पकड़े हुए कस गए, और उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य मुस्कुराया और उसने सुनैना को किस करना जारी रखा, क्योंकि उसे पता है कि अब सुनैना भी उसे मना नहीं करने वाली, तो वो अब आगे बढ़ सकता है। आदित्य ने सुनैना का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी उंगलियां उसके हाथ में फांसते हुए उसने उसका हाथ साइड में किया और फिर उसके नेक एरिया से नीचे आते हुए चेस्ट पर किस करने लगा, और सुनैना के अब उसका साथ देते हुए उसकी नेक पर किस कर रही है और वो दोनों पूरी तरह से ही एक दूसरे में खो गए हैं। मनस्वी की कलाई पर अभी भी बैंडेज बंधा हुआ है, लेकिन उसकी चोट पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, और मनस्वी तो अपने हाथ की चोट पर ध्यान भी नहीं देती, उसका तो पूरा ध्यान अनय पर ही रहता है। अनय का बर्ताव भी अब मनस्वी के लिए पहले से काफ़ी ठीक हुआ है, काफ़ी हद तक, और वो अब उससे बातचीत करता है और उसकी केयर भी करता है। उसने मनस्वी को ऑफिस भी नहीं जाने दिया है ये बोलकर कि वो जब तक पूरी ठीक नहीं हो जाती तब तक वो घर से कहीं भी नहीं जाएगी और ये उसकी सजा है बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाने के लिए। मनस्वी ने चुपचाप उसकी बात मान ली क्योंकि वो तो बस अनय के साथ ही अपना सारा टाइम बिताना चाहती है और ऑफिस होटल का सारा काम वो घर से ही अपने लैपटॉप पर चेक कर लेती है। अनय को इस बारे में पता है लेकिन वो उसे मना नहीं करता क्योंकि उसे पता है काम भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर बस या लीडर ही ना हो तो फिर सारे लोग ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए वो कॉल मेल और मैसेज पर सब कुछ चेक करती रहती है और अनय भी इसमें उसकी मदद करता है। वो अभी भी रूम में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही है तभी अनय दो कप में कॉफ़ी लेकर आया और उसने एक कप मनस्वी के साइड वाले टेबल पर रख दिया और खुद वहां से आगे आते हुए दूसरी तरफ से आकर बेड की दूसरी साइड पर बैठ गया। तो मनस्वी ने साइड में नज़र करते हुए चुपके से उसकी तरफ देखा और कुछ भी नहीं बोली और पहले की तरह ही अपने काम में लगी रही। तो अनय ने उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, कॉफ़ी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मुझे ठंडी कॉफ़ी ही पसंद है, मनस्वी ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब दिया। तो फिर अनय कुछ नहीं बोला और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके वहाँ से उठकर जाने लगा। तो मनस्वी एकदम ही चिढ़ गई, उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोली, मैं यहाँ पर ही बैठी हुई हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आती क्या और तुम कब बोलोगे मुझसे?
अच्छा तो इस तरह से रास्ता रोक कर खुद को नोटिस करवाओगी क्या? और वैसे भी अभी मैं तुम्हारे लिए ही तो कॉफ़ी लेकर आया और तुमसे ही कॉफ़ी पीने के लिए भी बोला, अब तुम्हें हॉट कॉफ़ी को भी खंड करके पीना है तो क्या बोलूँ मैं, मेरी खत्म हो गई, मैं जा रहा हूँ। अनय ने एकदम सीधे ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो मनस्वी ने बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हुए घूर कर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम सच में इतने इडियट और अनरोमांटिक हो क्या अनय? हम दोनों अकेले रहते हैं यहाँ, फिर भी तुम्हें कभी भी प्यार नहीं आता ना अपनी वाइफ पर, ज़रा सा भी नहीं। इतना बोलते हुए मनस्वी ने एकदम नाराज होने वाला चेहरा बनाया तो अनय उसकी ये बात सुनकर एकदम से खांसने लगा और हंसते हुए बोला, प्यार क्या बोल रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? हाथ के साथ सिर पर भी चोट लगी तो नहीं?